ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के प्रत्यक्ष की ओर आज पूरे देश में शांतिपूर्ण और उत्साहजनक रूप से किया गया उम्मीदवारों का नामांकन दर्ज। विभिन्न राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों सहित 3,400 से अधिक लोगों का नामांकन हुआ दर्ज। नेपाली कांग्रेस की आधिकारिकता से जुड़े विवाद में सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करने से किया इनकार। स्यांगजा के वालिंग में ट्रैक्टर दुर्घटना में दो लोगों की मौत, चार लोग हुए घायल और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित एक चीनी रेस्तरां में हुए विस्फोट में सात लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए आज देश भर मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयों और निर्वाचन अधिकृत कार्यालयों में उम्मीदवारियां दर्ज हुई हैं। निर्वाचन आयोग ने इसे उत्साहजनक बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने बताया कि 3,400 से अधिक उम्मीदवारों के मनोनयन दर्ज हुए हैं। कल सुबह 10 बजे से 3 बजे तक दर्ज उम्मीदवारों के विरुद्ध कोई शिकायत होने पर उसे दर्ज किए जाने और शिकायतों के ऊपर जांच पूरी कर मांग 8 गते शाम 5 बजे से 7 बजे तक उम्मीदवारों की नामावली प्रकाशित किए जाने की बात प्रवक्ता भट्टराय ने बताई। वहीं मांग 9 गते सुबह 10 बजे से 1 बजे तक उम्मीदवारों के नाम वापस लिए जा सकते हैं और उसी दिन दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवारों की अंतिम नामावली प्रकाशित की जाएगी। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली में देश भर के चुनाव क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं, निवर्तमान मंत्रियों समेत नेताओं ने उम्मीदवारियां दर्ज करवाई है। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक निकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ने झापा क्षेत्र नंबर 5 से उम्मीदवारी दी है। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने रूकुम पूर्व से उम्मीदवारी दी है। इसी तरह प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी के संरक्षक डॉ बाबूराम भट्टराय ने गोरखा क्षेत्र नंबर 2, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के सह संयोजक माधव कुमार नेपाल ने रौतहट 4, नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने सरलाही क्षेत्र नंबर 4, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछानी ने चितवन क्षेत्र नंबर 2 से उम्मीदवारी दी है। वहीं उज्यालो नेपाल पार्टी के अध्यक्ष फुलमान घिसिंग ने काठमांडू क्षेत्र नंबर 3 से और श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष हर्कराज राय सापांग ने सुनसरी 1 से मनोनयन दर्ज कराया है। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेताओं की उम्मीदवारियां दर्ज हुई है। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा है कि निर्वाचन के लिए शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज गृह मंत्रालय में सुरक्षा मामलों से जुड़े पत्रकारों के साथ हुई चर्चा में गृहमंत्री अर्याल ने बताया कि प्रदेश स्तर पर सुरक्षा गोष्ठियां आयोजित कर एकीकृत सुरक्षा योजना को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि भयमुक्त माहौल में निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए शांति सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था की गई है। पिछले समय की तुलना में वर्तमान में शांति सुरक्षा के स्थिति में सुधार हुआ है। बताते हुए गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन को सफल बनाने पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रविधि के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए गृह प्रशासन के नेतृत्व में टेलीकॉम, साइबर ब्यूरो और संबंधित निकायों की सहभागिता से आवश्यक व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के मतदाताओं से मतदान के लिए जाति समय पहचान पत्र साथ ले जाने का अनुरोध किया है। आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय द्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आगामी माह 11 को होने वाले निर्वाचन में मतदान करने वाले मतदाताओं को अपनी पहचान स्पष्ट करने वाला परिचय पत्र अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र निर्वाचन अधिकृत द्वारा प्रदेश सभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर प्रदान किया गया प्रमाण पत्र तथा निर्वाचन अधिकृत द्वारा गांवपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं नगरपालिका प्रमुख और उपप्रमुख के रूप में निर्वाचित होने पर प्रदान किया गया प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इसी तरह प्रदेश सभा सचिवालय या स्थानीय तह द्वारा प्रदान किया गया संबंधित पद दर्शाने वाला परिचय पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय परिचय पत्र भी साथ रखने की जानकारी आयोग ने दी है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालत ने विशेष महाधिवेशन के माध्यम से नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा के नेतृत्व को आधिकारिक मानने संबंधी निर्वाचन आयोग के निर्णय के खिलाफ दायर रीट याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेल की एकल पीठ ने आज सभापति थापा के विरूद्व शेर बहादुर देववा के नेतृत्व वाले समूह द्वारा दायर रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि इस विवाद से जुड़ी रीट याचिका में जटिल और गंभीर कानूनी तथा संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं। इन प्रश्नों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता को देखते हुए विपक्षियों की लिखित जवाब दाखिल होने या उसकी अवधि समाप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस नेता देववा और पूर्ण बहादुर खड़का के बारिश श्रवण कुमार श्रेष्ठ द्वारा माघ 4 को दायर रीट याचिका में निर्वाचन आयोग के निर्णय को रद्द करने, माघ 6 को हुए निर्वाचन के उम्मीदवार प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा नवनिर्वाचित कार्य समिति को अवैध बताते हुए उसे भंग करने की मांग की गई थी। सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछानी से जुड़े संगठित अपराध और संपत्ति शुद्धिकरण मामले में संशोधन के विरुद्ध दायर याचिका पर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय द्वारा किए गए निर्णय की मूल प्रति तलब करने का आज आदेश दिया है। न्यायाधीश अब्दुर अजीज मुसलमान की एक पीठ ने लामिछानी पर लगाए गए संपत्ति शुद्धिकरण और संगठित अपराध के आरोपों के मामले में महान्यायाधिवक्ता कार्यालय द्वारा गत 30 को किए गए संशोधन संबंधी निर्णय की सकल प्रति प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि 3 मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुए मंत्रालयों का कार्यभार प्रधानमंत्री सुशीला कार्की संभालेंगी। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री महावीर पून, संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल और युवा तथा खेलकूद मंत्री बबलू गुप्ता के पद से इस्तीफा देने के बाद उनके द्वारा संभाले जा रहे मंत्रालयों का कार्यभार प्रधानमंत्री कार्की को सौंपने का निर्णय किया गया है। भारत सरकार द्वारा नेपाल को निर्वाचन की तैयारी के लिए प्रदान की गई चुनाव संबंधी सहायता का पहला चरण आज गृह मंत्रालय में हस्तांतरित किया गया। गृह मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय दूतावास के उपमिशन प्रमुख राकेश पांडे ने गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल को 60 से अधिक डबल कैब पिकअप वाहन तथा अन्य आवश्यक सामग्री सौंपी। स्यांगजा के वालिंग चापाकोट पक्की सड़क खंड के अंतर्गत वालिंग 7 धोड़े पानी में आज ट्रैक्टर दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। जिला पुलिस कार्यालय स्यांगजा के सूचना अधिकारी प्रसन्न राज चौधरी के अनुसार दुर्घटना में वालिंग 7 के केवरे निवासी 65 वर्षीय दोल राज कोयराला और कैलाली के टीकापुर 7 निवासी 35 वर्षीय राजकुमार चौधरी की मौत हुई है। ट्रैक्टर दुर्घटना में घायल हुए 4 व्यक्तियों को आगे के उपचार के लिए पोखरा भेजा गया है। वालिंग से पत्थर लेकर चापाकोट की ओर जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 10 मीटर नीचे एक खाई में गिर गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को एक चीनी रेस्तरां के बाहर हुए विस्फोट में एक चीनी नागरिक सहित 7 लोग मारे गए हैं और 20 लोग घायल हुए हैं। काबुल पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक राजधानी के शहर एनाव इलाके में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों में एक चीनी नागरिक और 6 अफगान नागरिक शामिल है। प्रवक्ता ने बताया कि विस्फोट स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे हुआ। काबुल के आपातकालीन अस्पताल के डॉक्टरों ने बीबीसी को बताया कि विस्फोट के बाद 4 महिलाओं और 1 बच्चे सहित 20 लोग घायल लोगों को अस्पताल में लाया गया था। पुलिस प्रवक्ता खालिद जरदान ने बताया कि मृतक चीनी नागरिक मुस्लिम था और अपनी पत्नी और अफगान सहयोगियों के साथ एक चीनी नूडल रेस्तरां चलाता था। उनके अनुसार विस्फोट रेस्तरां की रसोई के पास हुआ जिसकी जांच चल रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के प्रत्यक्ष की ओर आज पूरे देश में शांतिपूर्ण और उत्साहजनक रूप से किया गया। उम्मीदवारों का नामांकन दर्ज विभिन्न राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों सहित 3,400 से अधिक लोगों का नामांकन हुआ दर्ज। नेपाली कांग्रेस की आधिकारिकता से जुड़े विवाद में सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करने से किया इनकार। स्याङ्जा के वालिङ में ट्रैक्टर दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत और 4 लोग हुए घायल। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित एक चीनी रेस्तरां में हुए विस्फोट में 7 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।